करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंता की महान। जो विद्यादि सागर सुधी सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य ही तो उपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने केवल ज्ञान पाने पूजे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान ऋषभदेव भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, युग के आदि में भगवान ऋषभदेव हुए और उनका निर्वाण हुआ। एक परंपरा चली धर्म के प्रवर्तन की। जैन धर्म में यह एक विशेषता है जो हमें जाननी चाहिए कि हम भगवान की हैसियत से पैदा नहीं होते, हम होते तो मनुष्य की हैसियत से पैदा है, लेकिन अपने आत्मस्वरूप को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो परम पद को पाने की योग्यता हमारे भीतर है। और यही हर एक तीर्थंकर के साथ बात जुड़ी हुई है, यह हमें समझनी चाहिए। तीर्थंकर और अवतार में फर्क है। अवतार वो माना जाता है जो पहले भगवान बन जावे तो फिर बाद में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आवे, ये अवतार माना जाता है अवतरित होना। तीर्थंकर वो है जो तीर्थ की तरह है। तीर्थ के दो अर्थ किए अपने आप। तीर्थ का पहला अर्थ होता है धर्म, तीर्थं करोति इति तीर्थ करा, जो तीर्थ यानी धर्म को करे, प्रवर्तित करे, स्वयं अपने जीवन में उसे घटित होने दे और प्राणी मात्र के लिए भी जो धर्म को करे वो तीर्थंकर के। और तीर्थ का एक अर्थ होता है घाट, जैसे बहुत गहरी नदी हो तो आसानी से पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर घाट बना गया तो उस घाट से अपन उस नदी को आसानी से पार कर सकते। इसी तरह तीर्थ यानी घाट, जो हमें आसानी से इस संसार की नदी से, उस संसार के सागर से पार उतारने के लिए सहयोगी बने, वो तीर्थंकर कहलाते। ऐसे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, फिर उसके बाद तो एक पूरी परंपरा चली जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक आई। हमारे मूलभूत सिद्धांत कौन से भगवान ऋषभदेव ने हमें दिए वो भी हमें जानना चाहिए। हमारे मूलभूत सिद्धांत में पहला सिद्धांत दिया भगवान ऋषभदेव ने मैं सिद्धांतों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ऋषभदेव का नाम और उनकी पूरी कथा अपन जानना चाहें तो जान सकते हैं और जानना भी चाहिए। कितनी सारी बातें अपन जानते हैं दुनिया भर की। मुझे कई बार लगा करता है कि आज शायद और सब बातें बहुत अच्छे से नाम है और इतना तो जानने चाहिए कि उनको कब वो गर्भ में आए, कब उनका जन्म हुआ, कब। जो लोग व्रत करते हैं उनको तो फिर भी मालूम रहता है कि गर्भ कल्याणक आ गया, जन्म कल्याणक आ गया, आज दीक्षा कल्याणक आ गया। कभी दीक्षा कल्याणक के दिन आपने अपने बेटे को पास बिठा के धीरे से कहा कि देखो एक तीर्थंकर हुए थे जिन्होंने आज दीक्षा ले ली थी, तुम्हारा क्या मन करता है? करता है मन तुम्हारा दीक्षा लेने का? हम तो नहीं ले पाए बेटे। तुम्हारा मन करे तो कभी विचार करना इस पे। ऐसा कहते हैं क्या कभी हम? नहीं कहते। इतनी अच्छी अच्छी सी बातें हमारे पास हैं लेकिन हम कभी इन चीजों पर गौर ही नहीं करते, बस सुन लेते हैं। नहीं भाई ये नहीं चलेगा। कब तक सुनते रहिएगा? कुछ करने के लिए भी तो होना चाहिए, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए। तो हमें ये जानकारी भी देनी चाहिए बच्चों को कि कब उनका कौन सा कल्याणक हुआ। बैठ करके हो सकता है कि को 24 तीर्थंकर के नाम ना मालूम हो और उनके चिन्ह तो बड़े बड़े लोगों को खड़े कर दिया जाए तो गड़बड़ा जाएंगे, वो भी बच्चे पास हो जाएंगे को। पर ये जानकारी रखनी चाहिए, उनके मूलभूत सिद्धांत भी जानना चाहिए और उन सिद्धांतों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमें उनको अपने जीवन में उतारने की भरकस कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। पहला सिद्धांत भगवान ऋषभदेव का जो आज तक चला आ रहा है, भगवान महावीर स्वामी और उनका जो युग चल रहा है, हमें कितनी बड़ी चीज विरासत में मिली हुई है। इस पर हमें कम से कम नाज होना चाहिए, इस पर हमें कम से कम गर्व और गौरव होना चाहिए इस बात का कि हमारे हाथ में कितनी बढ़िया चीज आई है और हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, इस बात का दुख भी होना चाहिए। जैसे किसी के हाथ में हीरा दे दिया जाए, मोती दे दिया जाए, चिंतामणि रतन दे दिया जाए और वो उससे कौवा उड़ाए तो उसको क्या कहोगे आप? नादान कहोगे, बुद्धू कहोगे। और ऐसे ही अपने हाथ में अच्छी बेशकीमती चीज आई हो और उसका अपन मिसयूज करें तो अपने को क्या कहेंगे? अपन बुद्धू कहेंगे। लेकिन इतना कह लेने से भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आज किसी को बुद्धू भी कह दो तो उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता, वो कहते ठीक जब हमारा मौका आएगा तो हम तुम्हें कह देंगे, साथ बराबर हो जाए। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, मैं आपको ये इशारा कर रहा हूं। हमारा बड़ा सिद्धांत मिला था वस्तु स्वातंत्र, नेचर ऑफ फ्रीडम। जैसे हम यहां जितने और जैसे हैं पैदा हुए हैं उस सब के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार हम खुद हैं। किसी ने हमें यहां ऐसा पैदा होने के लिए मजबूर नहीं किया है, ये हम अपनी वजह से यहां हैं और जिस दिन हम चाहें यहां से पार होकर के मुक्त हो सकते हैं। ये वस्तु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भगवान ऋषभदेव ने कहा था। हम स्वतंत्र हो सकते हैं संसार से, बंधन अगर हमने बंधन में है तो बंधन हमने स्वीकार किया है इसलिए बंधन में है। जैसे कोई कहे कि हम मुक्त कैसे होंगे या कि कोई कहे कि हम मुट्ठी कैसे खोले, तो सीधा सीधा सा है कि भैया बांधते काहे को, वो तो खुली हुई है। अब आप बांधने की कोशिश करते हो इसलिए हमें बताना पड़ता है कि ऐसे खोली जाती है। नहीं, असल में हम अगर अपने स्वभाव की तरफ ध्यान दे दें तो हम तो मुक्त स्वभाव को लिए हुए हैं, बस हमारी कमजोरियां हैं, हमारी कशाएं हमें कमजोर कर देती हैं और वे हमें संसार में फंसा देती हैं, हमें पाप में प्रवृत्त कर देती हैं। हमारी कशाएं, हमारे क्रोध मान माया लोभ, इस बात की तरफ इशारा किया था कि कमजोर क्यों बन जाते हो? तुम्हारा स्वभाव कमजोर नहीं है, तुम अपने आप में स्वतंत्र हो और अनंत शक्ति को लेकर के आए हो। देखो मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं बताता हूं उसे प्रकट करके। और भगवान ऋषभदेव ने उस अनंत शक्ति को प्रकट करके बताया। ये उनके पहले सिद्धांत को हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इससे हम क्या सीखेंगे अपने जीवन में? इससे दो चीजें सीखने की है। पहली ये कि अगर कोई काम बन जाता है तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए हर्षित? क्योंकि हमने किया है, यही तो मुश्किल है। वो घटित होना था, हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं, हम कर्ता नहीं है। अगर हम वस्तु स्वातंत्र को समझते हैं तो कर्तृत्व से मुक्त हो जाएंगे हम। और दूसरी चीज, हम गिला शिकवा नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ घटित हुआ है तो हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, दूसरे को दोष कैसे दे रहे हैं? ये तो वस्तु स्वातंत्र है। जो भी परिणाम हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ बड़ा मजा है, अगर अच्छा हो जाता है तो हम कहते हमने करा, और अगर बुरा हो गया इनमें उनमें ऐसी परिस्थितियां बन गई इसलिए ऐसा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है। अगर जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उस सब के लिए हमें अपने को जिम्मेदार मानना पड़े, किसी दूसरे की जिम्मेदारी। हाँ, निमित्त तो बन सकता है, ऐसा मत सोचना कि निमित्त नहीं बन सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। निमित्त तो बनता है, लेकिन आखिर है तो हमारे द्वारा किया गया, ये हमें मानना पड़े। तो पहला सिद्धांत हो गया, अच्छा सिद्धांत है, गिला शिकवा नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है अनेकांत। बहुत सारे धर्म वस्तु के भीतर होते हैं, उन सबको हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही हर चीज के बारे में बहुत सारे सोच हो सकते हैं, हर व्यक्ति अपनी तरह से सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो हमें हर एक के सोच का सम्मान करना चाहिए। ये वैचारिक सहिष्णुता आज बहुत कम हो गई। दूसरे की बात को इग्नोर करना तो आसान है, लेकिन दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर लेना, उसे स्वीकार कर लेना कि हाँ आप भी किसी अपेक्षा ठीक कह रहे हैं। अगर कोई अपने को कहे कि आप चोर हैं तो कैसा लगेगा? तो थोड़ी देर तो लगेगा कि मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, तो वर्तमान में तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन ये आखिर मुझे चोर क्यों कह रहा है? हो सकता है पिछले किसी जीवन में और कभी मैं चोर रहा हूं, तो क्या बुरी बात है, कह लिया ठीक, कह सकता मैं रहा हूंगा, अनादिकाल से आ रहा हूं, हो सकता है कभी चोरी भी की हो मैंने। आज वर्तमान के अपेक्षा भले ही मैं साफ सुथरा हूं, लेकिन कभी तो हम उसकी बात पर गुस्सा नहीं हो पाएंगे फिर चोर कहने के बाद भी। ये वैचारिक सहिष्णुता भी आनी चाहिए, हमारे एक दूसरे के विचारों का हम सम्मान करें, एक दूसरे की बात पर हम थोड़ा सा गौर करें कि उसकी बात वो ऐसा क्यों कह रहा है, इस दृष्टि से किस दृष्टि से कह रहा है। इसी तरह वस्तु तत्व है, अगर हम अपने जीवन को देखें तो एक दृष्टि तो ये है कि मैं मनुष्य हूं, दूसरी दृष्टि ये है कि मेरे भीतर कोई परम सत्ता बैठी है, परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसा भी तो है, वो भी देखते रहना चाहिए। इसी पर्याय में नहीं फंसे रहना चाहिए, दिन रात इसी मनुष्य हूं मैं और ऐसा करना है मुझे, वैसा करना है, बस इसी में नहीं, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। इस बात की कभी सुबह से शाम तक कभी ख्याल आती है क्या अपन को? नहीं आती, ना अपन को आती है, ना अपन विरासत में अपने बच्चों को देके जाते हैं। शाम को कोई भी माँ अपने बेटे को बिठा के ये कहती कि तू शुद्ध बुद्ध एक निरंजन स्वभाव वाला है, कुंद कुंद की माँ कहती थी सुबह, तू चली गई, कुंद कुंद भी चलेगा, मैं भी चली। ऐसी माँ क्यों नहीं है जो अपने बेटे को कहे कि तू शुद्ध बुद्ध निरंजन एक स्वभाव वाला है, पढ़ लिख लिया तूने, बहुत राजा बेटा बन गया, लेकिन तेरा स्वभाव तो ये है, तू जान इसको। ये थोड़ा सा हमें संदेश देना चाहिए। इसी संदेश देने के लिए तो ये पर्व आते हैं जो हमें संदेश देते हैं, और हम इन संदेशों को ट्रांसफर करें, अपने छोटे बच्चों को दें। आज बहुत जरूरत है संस्कारों की। अपन को तो संस्कार जितने मिले हैं वो मिले ही हैं कि आप यहाँ तक आते हैं समय निकाल करके, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो यहाँ आके अपना घंटे भर मैं देख रहा हूँ कि अगर दो का टाइम दिया है तो 10-15 लोग तो 2 बजे ही आ गए हैं, भले ही बाकी लोग 3 बजे आए हों। लेकिन आए हैं अपना दो दो घंटे क्यों दे रहे हैं। कुछ थोड़ा पुराना बना हुआ है कि भैया चलो दो घंटा पाप से तो बचे, हम कहते कछु नहीं सुनो ने कछु समझ में आई, पाप तो नहीं करो, हूं तो बाहर खड़े होते कोई पानी की दुकान पे, दुकान ही बैठे होते अपनी अच्छी दुकान पे, तो भी दो बातें राग द्वेष की होती और कछु नहीं होता। और बस इतना ही तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, इतना लाभ भी छोटा लाभ नहीं है। तो दूसरी चीज वैचारिक सहिष्णुता, और तीसरी चाहे अहिंसा, अहिंसा पर एलक जी ने और काफी बात कही है, हमें राग द्वेष से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और राग द्वेष होता है वस्तुओं से, जितनी चीजों पर हमारी पजेशनेस रहेगी, जितनी चीजों को हम अपना मान के चलेंगे उतना राग द्वेष होगा और उतना ही हमारे द्वारा हिंसा होने, इसलिए चीजों को कम करिए। चीजों की आवश्यकता जितनी है उतनी रख लीजिएगा, जितनी आवश्यकता नहीं उनको हटा दीजिए, वो ही तो अपरिग्रह हो जाए। आप चीजों पर से स्वामित्व हटा लीजिएगा, चीजें पड़ी रह जाएंगी वहीं के वहीं। और चीजों में अब ये जो बोली वगैरह करते हैं लोग सोचते होंगे काय को करते हैं, ये पजेशनेस कम करने के लिए करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे भीतर कितना त्याग है, अहंकार को विसर्जित करने के लिए है, त्याग के लिए है कि देखें हम इकट्ठा करते समय तो इकट्ठा कर लेते, छोड़ते समय भी हमारा हाथ खुला होना चाहिए। छोड़ा हमारा थई कहां जो कि हम ग्रहण कर सकते थे, इसलिए तो हमने छोड़ दिया। इतनी समझ आनी चाहिए। ये तीन बातें दी गई थी प्रवचन, और ये सब संदेश बहुत दुर्लभ होते हैं, हमें इनकी दुर्लभता भी समझनी चाहिए। कभी आपको कभी बिटिया की भी शादी करी हो, आज की बिटिया की नहीं कह रहा हूं, अब तो शादी वादी मैंने देख ली, खूब गौर से देखता रहता हूं, सब शादी वादी नहीं होती, वो तो बस कुछ भी तो दो घंटे के अंदर हिसाब किताब बराबर करके कि जाओ तो टरो, बहुत बोझ जैसा था ऐसे निपटा सा देते हैं, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता भाई, हो सकता है आप अच्छे से करते हो मैं गलत हो सकता हूं, मगर मुझे देख करके लगता है। पर पहले जो है अगर कोई पिता अपनी बिटिया की शादी करता था और विदा करता था तो दो चार दिन तो ठीक से खाया नहीं जाता था, मुझे ऐसा मैंने देखा है। इतना स्नेह जो है, अब उसको मोह कह लीजिएगा, कह सकते हैं आप, देर क्या लगती कहने में, थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो मोह कहेंगे आप, लेकिन ये एक आत्मीयता थी। जब हम वहां पर एक अपनी बिटिया के स्नेह में दो चार दिन ठीक से नहीं खा पाते हैं, रात उठ जाते हैं तो आंसू बहाते हैं, क्या कभी हमें अपने तीर्थंकर के अभाव पर ऐसे ही आंसू गिरे हैं क्या? आज कोई तीर्थंकर नहीं है, आज कोई समोशरण नहीं है, कहां है तीर्थंकर, कहां होंगे तीर्थंकर, कहां उनका होगा समुशरण, कहां उनकी दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी, इस बात की कोई तड़प ही नहीं। बस हम थोड़ा सा पिस्ताल लेते हैं पंचकल्याणक, उसी में देख लेते हैं और वापस घर लौट आते हैं। जो ओरिजिनल होता होगा वास्तव में देखते होंगे वे कितने सौभाग्यशाली होंगे, हमें भी वैसा सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती रोए थे भगवान के निर्वाण पर, रोए थे भरत चक्रवर्ती, छायक सम्यक दृष्टि थे भैया, आज वर्तमान में कोई छायक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, शायद सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी थे, चक्रवर्ती तो थे ही। और जब भगवान ऋषभदेव को मोक्ष हो गया, उनका निर्वाण हो गया, तो फूट फूट के रोए। लोगों ने कहा कि आप इतने बुद्धिमान और आप रो रहे हैं, भगवान के ऋषभदेव आपके पिता थे, इस बात का आपको इतना मोह है? पिता थे इस बात का मोह तो उसी दिन छूट गया था जब उन्होंने घर छोड़ा था, लेकिन बात तो बहुत दूसरी ही है रोने की। रोने की बात सिर्फ इतनी है कि जो तीन संध्याओं में दिव्य ध्वनि खिड़ती थी, चार बातें धर्म की सुनते थे, भगवान के जाने के बाद अब कौन सुनाएगा, किससे सुनेंगे चार बातें? इसके लिए रो रहे हैं, मोह की वजह से नहीं रो रहे हैं। मेरे संसार से पार करने के जो उपाय थे वो मेरे से दूर चले जा रहे हैं, इसके लिए रो रहे हैं। दुनिया की संपत्ति हमारी छिनती है, हमारी घर गृहस्थी में कोई चीज की कमी हो जाती तो रो पड़ते हैं हम, और हमारे धर्म के साधन कम हो जाते, हमारे धर्म के क्षण कम हो जाते तो नहीं रोते हम कि आज तो दिन भर निकल गए, एक बात धर्म की नहीं हो पाई, हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगा। ये खिला में रो करो, कभी नहीं रो इसके। शाम को बैठ के कोई इस बात के लिए दुखी नहीं हुआ होगा कि आज दिन भर में थोड़ो ही सो धर्म कर पाए, थोड़े और कर लेते, ये पर्याय ऐसे ही निकल जाए कि आज अवसर है भगवान के निर्वाण पर, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ उनके सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, जितनी धर्म की बात करो उतनी अच्छी है, पर जितनी अपने जीवन में आ जावे वो सबसे अच्छी है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने सबके जीवन में जो भगवान ने हमें दिया है संदेश, वो हम अपने जीवन में भी लागू करें और अपना कल्याण करें। बोलिए भगवान ऋषभ देव स्वामी की जय। आचार्य गुरुर विद्या सागर मुनि महाराज की जय। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। ये दिनों अपन ने तीन बातें सीखी थी कि जब हमारे जीवन में धर्म प्रकट होता है या जो व्यक्ति धार्मिक होता है उस व्यक्ति के जीवन में सहज रूप से तीन बातें आ जाती हैं। सरलता आ जाती है, संवेदनशीलता आ जाती है और सजगता आ जाती है। अपने आत्म कल्याण के प्रति व्यक्ति सजग हो जाता है और सरल कि जैसी वस्तु है वैसा उसे अनुभव में लेने की कोशिश करता है। और संवेदनशील तो होगा ही, जो व्यक्ति सजग होगा वो संवेदनशील भी होगा। ये तीन बातें अपन ने पिछले दिनों सीखी थी। आज इन्हीं तीन बातों में से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं अपन। बीच में एक चीज और सीखी थी कि जो श्रावक है उसे संतोषी होना चाहिए और साधु हो तो वो समतावान होगा। संतोष और समता दो चीजें श्रावक और साधु के भीतर होती। पर तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते जब तक कि मुझे लगता है कि हम वस्तु तत्व को निष्पक्ष रूप से जब तक ग्रहण नहीं करते। वस्तु तत्व को जानने की हमारे भीतर प्यास नहीं होती और जब तक हम ये नहीं समझते कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं, हमारा कल्याण हमारे द्वारा ही संभव है, तब तक हमारे जीवन में धार्मिकपना नहीं आता। आज वर्तमान में बहुत धार्मिक होना आसान हो गया है, ऐसे आसान हो गया है कि हमने मंदिर गए हैं, हमने स्वाध्याय करा है, पूजा करी है और बस हो गए हम धार्मिक। बड़ा आसान हो गया इस तरह धार्मिक होना। हम अपने जीवन में क्या करते हैं इसकी हम जरा भी चिंता नहीं करते, इसलिए बहुत आसानी है धार्मिक होने में। पर आज धार्मिक होकर के भी व्यक्ति शांत नहीं है, सुखी नहीं है, इसका अर्थ यही है कि उसने धार्मिकता का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ इतना कर लेने का नाम धर्म नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और जीवन में परिवर्तन भी कैसा आवे, तो श्रद्धा पूर्वक आवे, हमें अपने जीवन का ज्ञान हो, हमारे जीवन में आचरण हो। ये तो हम रोज सुनते हैं, नहीं लेकिन किस तरह से हो, प्यास पहली चीज है और वो आज खत्म हो गई। जिसको अपने आत्मकल्याण की चिंता होती है वो तो 24 घंटे इस बात के लिए तड़पता रहता है। सम्यक दृष्टि के लिए लिखा हुआ है कि जैसे किसी निरपराधी व्यक्ति को कोई अपराधी साबित करके और कोतवाल पकड़ के ले जाता है, तो वो मन ही मन विचार करता है कि निरपराधी हूं, मेरे को कब अपराध से मुक्ति मिलेगी, मैं कब निरपराधी घोषित कर दिया जाऊंगा, आज तो लोग मुझे अपराधी घोषित कर रहे हैं, ऐसा विचार करता है। ठीक इसी तरह एक सदगृहस्थ भी गृहस्थी में तो विस्तार लेता है, लेकिन 24 घंटे इस बात का विचार करता रहता कि कब इस चंगुल से फंसकर फंस तो गया हूं, कब इससे बाहर निकलूं और अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ूं। तो वो क्या करेगा? अगर ऐसा विचार करता होगा तो मैं मानता हूं कि हां वाकई में वो धार्मिक है। और जो ये विचार करता है कि मंदिर जाने तो सुमंदर हुआ है, स्वाध्याय बैठने तो सुस्वाध्याय कर लो, पूजा करी अब और हमसे का करवाओ जा, तो भाई अब ये तो हमने अपनी प्रक्रिया अपने आत्म कल्याण की शुरुआत के लिए की है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र हमें निमित्त बन गए लेकिन वे हमारा कल्याण कर देवे, ऐसा तो नहीं है। कल्याण तो हमें करना पड़ेगा और 24 घंटे के जीवन में करना पड़ेगा। ये बात अपन लोग नहीं समझ पा रहे, मुझे तो लगता है नहीं समझ पा रहे। हो सकता आप समझ रहे हो उस चीज को, पर जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, निश्चल और पवित्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वो चीज नहीं है। हम अपने सुख दुख तक ही सीमित रह गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक चीज अपन और समझें, एक श्रावक की हैसियत से समझें कि दिन भर की हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, दिन भर हमें किस तरह अपने विचारों को और अपने आचरण को कैसे संभालना चाहिए, इस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जितना भी संसार का प्रपंच बढ़ता है वो हमारे विचारों और आचरण की अपवित्रता के कारण ही बढ़ता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि विषयानुरागा अशुभोपयोगा, धर्मानुरागा शुभोपयोगा, निरुपरागा शुद्धोपयोगा। हमारी मनवचन काय की क्रिया या हमारे जानने देखने की क्षमता का नाम है उपयोग। वो उपयोग तीन तरह का है, श्रावक दशा में तो दो ही तरह का है। मुनि बन जावे तो शुद्ध उपयोग की गुंजाइश है कि राग द्वेष से थोड़ी देर मुक्त होकर वीतराग भाव में स्थिर रहे। श्रावक तो सामायिक के समय में भी वीतराग भाव में स्थिर नहीं हो पाता, वीतराग भाव की भावना तो भा सकता है, उस पर श्रद्धा है उसकी वीतरागता पे, भावना है उसकी, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है वीतराग भाव। राग द्वेष से मुक्त होने के क्षण श्रावक के जीवन में तो आते नहीं, लेकिन क्या करे वो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, तो कहते कि राग द्वेष से मुक्त होने के लिए श्रावक को अच्छा उपाय है कि धर्मानुराग। उसका वो जो अनुराग, जो संसार का अनुराग है, वो हट करके धर्म में लग जावे। इसलिए फिर आप समझना पड़ेगा कि धर्म एक्चुअली क्या है, तो हम धर्मानुराग करें कैसे। देव पूजा गुरु पास्ती जो धर्म कहे गए हैं तो वो हमने मंदिर में आके कर लिए हैं, अब घर में हम कैसे धर्मानुराग करें, इस प्रक्रिया को मैं आपसे सोचता हूं कि बताऊं। और बहुत आसानी से हम घर में रह करके भी और धर्म ध्यान 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकते हैं, आर ध्यान रौद्र ध्यान से बच सकते हैं, क्योंकि आर ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है और दिन भर उन्हीं में हम फंसे रहते हैं। आप गौर से अगर देखना शुरू करें तो कई बार तो हम मंदिर में भी आर ध्यान कर लेते हैं, ठंड ज्यादा पड़ रही हो तो क्या होता है सिवाय पीड़ा चिंतन के, आर ध्यान के। हमारे मन का हो गया तो इष्ट संयोग, हमारे मन का हो गया तो भी आर ध्यान है, हमारे मन का ना हो तब भी आर ध्यान है, ये ध्यान रखना। जब इष्ट का वियोग हो जाता है तब भी आर ध्यान है, और जब अनिष्ट का संयोग हो जाता सो भी व्यक्ति आर ध्यान करता है। धर्म ध्यान कैसे करें, सवाल ये है। और 24 घंटे तो बात बनेगी, दो चार मिनट घंटे भर यहां कर लिया तो बात नहीं बनेगी, देख तो रहे हैं हर जगह जो है व्यक्ति लग रहा है कि धार्मिक हो गया है, खूब भीड़ भी हो रही है मंदिर में और फंक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन जो कहते हुए बेई कषायें बेई पाप बेई सब कछु, बोई सोच का ढंग कुल मिला करके, अभी उठ अवस्था में निकलत भाई अच्छी दिन दिखा पड़े तो लोभ जागृत हो जाता, तो क्या मतलब हुआ। अभी कोई थोड़ा सा ऊंची नीची बात कह दे तो अहंकार जागृत हो जाता, तो मतलब क्या हुआ, मान कषाय कहां चली गई, कषायों पर विजय प्राप्त क्या कैसे करे श्रावक। तो कहते धर्म ध्यान में मन लगाए। धर्म ध्यान कैसे हो, तो चार प्रकार का धर्म ध्यान है भैया, चार प्रकार का धर्म ध्यान है। कोई ना कोई ध्यान हमेशा चलता रहता है, उसको डाइवर्ट भर कर ले। आज अपन चार ध्यानों की बात कर ले, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय, ये चार प्रकार का धर्म ध्यान है। आप दिन भर में कर सकते हैं, जो व्यक्ति इस तरह का विचार बना के रखेगा वही सच्चा धर्मात्मा कहलाएगा, धर्म ध्यान करने वाला। अकेली बाह्य क्रिया कर लेने वाला धर्म ध्यानी नहीं कहलाएगा। बाह्य क्रिया तो आसान है लेकिन अंतरंग में विशुद्धि कितनी है इस पे धर्म निर्भर करता है। वो विशुद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही, ठीक है पंचम काल का थोड़ा सा दोष तो है, कहता मेरी बुद्धि में नहीं आती लेकिन भगवान ने जैसी कही तो वैसी है। ऐसा कर पाते हैं क्या होता, 24 घंटे में आप करते हो तो शायद ही वो कोई नहीं करता होगा। बिचारी कभी कोई माता पिता आपस में बैठ करके और फलाने के तो ब्याह हो को कैसे करने और घर को कैसे करने, ये बात के लाने तो दस दफे बैठे होंगे 24 घंटे में, मगर उस बात के लिए बैठे होंगे कि गृहस्थी तो करने बसा ले। अपने लिए भगवान का क्या उपदेश है, भगवान की आज्ञा क्या है अपने लिए गृहस्थ है। पर शाम को बैठ के दो जने जिनने गृहस्थी आगे बढ़ाई है, दो बैठ के शाम को विचार कर के भगवान की क्या आज्ञा है हमारी, एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, हम दोनों बैठ करके इस बात पर विचार करें। तुम्हें जीविका स्वरूप आता है या नहीं आता है, तुम्हें सात तत्व आते हैं कि नहीं आते, इस पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया। किसी ने विवाह करके अगले दिन सुबह बैठ के ये नहीं विचार किया होगा कि सात फेरी तो हो गई, मनो जा बताओ कि सात तब तो आउट के नहीं आओ, क्योंकि वो प्रयोजन भूत है। फिर आप किस आज्ञा विजय की बात करते, फिर आप कौन सी बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं इतने वर्षों से, 16 वर्षों से मैं प्रवचन में बहुत सारी बातें कहता हूं जितनी बनती है उसकी अच्छी से अच्छी बात, लेकिन आदमी जहां का कहां। लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आज तो, पहले तो कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं था, आज तो बढ़िया प्रवचन होते हैं, धर्म होता है महाराज जी, लेकिन हर जगह हर समाज में हर घर में फूट है, मतभेद है, कलह है, दुनिया भर की बातें हैं। आखिर फिर आप लोगों के इस प्रवचन इत्यादि का क्या मकसद हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बात तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होती है। वो ये है कि व्यक्ति जहां है वहां परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है या कि चीजों में शामिल हो रहा है।
वहां रथ यात्रा है, सुबह 12 बजे शामिल होंगे। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के पीछे चलने की हिम्मत बहुत कठिन बात है। भगवान के रथ के पीछे तो आप चलेंगे, लेकिन कभी जीवन में भगवान के पीछे चले आगे विषय नाम का भावमान आपने 24 घंटे करा क्या? नहीं करा। भगवान के पीछे चलना उसका आशय यही था कि आज तो भगवान के पीछे चलने की आदत, ऐसे 24 घंटे जहां जो बात आ गई उसमें विचार करना। कौन व्यक्ति होगा जो विचार करता होगा? 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता होगा? नहीं करता। देख जैसे मेरे से पाठ कर लो, 12 भावनाओं को 10 मिनट लगा, टिकी टिकी। लेकिन उस समय जबकि कोई चीज कांच की हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर गई है, उस समय कोई विचार नहीं है, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखो ये है वस्तु शरीर, कांच का था, क्षण भर में टूट के और गिर गया। ये भी जो है ऐसे ही है, किसी दिन ऐसे ही टूट करके गिर जाएगा। अनित्य है, यहां संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। हम यह परेशान होते रहते कि जी अच्छी है, जी अच्छी है, जी हमेशा रही आएगी। नहीं, हमेशा नहीं रहती। बस ऐसा विचार करके फिर अपने काम में लग गया। बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा विचार आ पाने ये यहां से शुरू होगा। धर्म बिल्कुल एक एक कदम से शुरू होगा। विपाक विजय, जब भी पीड़ा होती है, जब भी हर्ष होता है, दोनों स्थितियों में। पीड़ा के समय तो आदमी थोड़ा सा विचार भी कर लेता है, लेकिन हर्ष के समय नहीं करता। हर्ष होता तो भूल जाता है, जैसे ही कोई हर्ष का काम हो तुरंत याद आ जाए, अरे किसी सातर्वेदनी कर्म के उदय से ये हुआ है। कर्म परवशे शांति दुख ही रंतरितुदय, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षना स्कता। अनाकांक्ष होकर के जीवन जीता है। क्यों अनाकांक्ष हो जाता है? क्योंकि वो जान रहा है कि सुख और दुख सब कुछ कर्म परवशे, कर्म के उदय में। आज हर्ष है, कल हो सकता विषाद हो जाए, लेकिन मैं हर्ष विषाद नहीं करूंगा, क्योंकि हर्ष विषाद करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है। मेरा स्वभाव तो हर्ष विषाद में शांत रहना है, समता धारण करना है। क्या ऐसा विचार अपन हर्ष विषाद के क्षणों में करते हैं? रोजमर्रा के जीवन में देखना, हम कहते हैं कि 100 बातों की जगह एक बात में कर लेना। चलो 100 मौके पे चूक जाए, लेकिन एक मौके पे तो सावधान हो जाए। किसी भी मौके पे जैसे हर्ष का समय आवे और हम शांत रह जाए कि नहीं इसमें क्या बात है, कर्म के उदय में आता है सब। और ऐसे ही जब बाहर हम चलते देखें, किसी को दुखी देखें, तो उसकी मदद करने दौड़ जाए, लेकिन जब अपने ऊपर दुख आ गए तब किसी की मदद की अपेक्षा नहीं रखें, बल्कि विचार करें कि मेरे किसी पूर्वार्जित कर्म का फल मिल रहा है। विपाक है ये। और कर्म के साथ बड़ा मजा है कि कर्म अपना फल देकर के मर जाता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सो अच्छा है, अपना फल देके यहीं के यहीं निकल आ जाता है। पता नहीं ये कब उदय में आता और कब मुझे भोगना पड़ता है, इसके लिए आज तो सजग हूं, जागृत हूं मैं। ऐसा विचार जो करता है वो करता विपाक विजय धर्म ध्यान और अपाय विजय धर्म ध्यान। वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अपाय विजय धर्म ध्यान विचार करें, किसी की स्वयं के ऊपर ही घटा ले, अपने भीतर आई हुई पीड़ा का उपाय क्या है? उपाय यही है, कर्म फिलॉसफी समझ ले, कर्म सिद्धांत समझ ले। पुराना कर्म उदय में आता है, सो जरूरी नहीं है कि वो नए कर्मों को बांध के जावे। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप होगा न बंध तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। आ रहा है उदय में, बहुत सीधी सी चीज है, कोई भी हमने बोया होगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, लेकिन उसका बीज बनेगी, नया वो फल देगी, कोई जरूरी नहीं। कर्म अपना फल देने के लिए उदय में आवे और हम समता परिणाम रखें तो 3 बातें एक साथ हो जाती। पहली बात तो ये कि कर्म अपना बिना फल दिए खिर जाता, क्योंकि हमने फल लिए ही नहीं। वो हमें दुखी करने आया था, हम दुखी हुए ही नहीं, हमने उसका फल लेने से इनकार किया।
ऐसा तो अपन कर लेते हैं, संसार के कामों में ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे हाथ की चीज है, हम लेना चाहें तो लेंगे, नहीं लेना चाहें नहीं लेंगे। कर्म के साथ हमारा जो बिहेवियर होगा, हम जैसा व्यवहार करना चाहें, कोई व्यक्ति हमारे पास में आवे और हमें चार चीजें देवे और हम नहीं लेवे तो क्या है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इसी तरह कर्म अपना फल देवे, हम लेने से इनकार कर देवे, हम नहीं होएंगे दुखी, असाता वेदनी का उदय आता रहे। बहुत साहस की आवश्यकता है, जो धर्मात्मा होगा वो ही करेगा इस तरह से, जिसको अपाय भी चाहिए, यही तो अपाय है, उपाय कर रहा है वो। उपाय क्या है इस पीड़ा से बचने का, उपाय यही है कि हम फल नहीं भोगेंगे, फल में आसक्त नहीं होंगे, हम कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाएंगे। आखिरी बात ये आ जाएगी, कर्तृत्व बुद्धि तो आए बिना रहती नहीं गृहस्थ के लिए, अच्छा हो जावे तो कहती मैंने किया और हर्षित होता है, और जब कोई बुरा होता है तो चार लोगों को दोषी ठहरा के कहता कि ये सब न होते तो काहे को मेरे जीवन में ऐसा बुरा हो जाता, जबकि आया उसके कर्म का उदय है। इतना सा इतना अपाय विचय बहुत आसान है, ये धर्म ध्यान नाम बड़े कठिन है, नए लोगों के लिए कठिन होगा कि अपाय विचय क्या चीज है। नहीं, विचार करना कि इन कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख से बचने का उपाय क्या है, इसी का नाम अपाय विचय धर्म ध्यान। उपाय यही है कि हम उसके फल को स्थगित कर दें, हम कर लेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे कि पेड़ में आम लगा हो आप उस चीज को बहुत आसानी से समझते हैं, ऐसे ही कर्म को समझना चाहिए। कर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम उनसे डरे डरे फिरते हैं, इसलिए हमें कर्म परेशान करते हैं। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी कोई चीज सृजित की हो किसी व्यक्ति ने, तो जो सृजन करने वाला है वो बड़ा होगा कि जो चीज सृजन की गई है वो बड़ी होगी। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। हमने कर्म इजाद किए हैं, कर्मों ने थोड़ी हमें बनाया है, कर्म हमारे हाथ का मेल है, कर्म हम करते हैं। एक कर्म वो है जो किए जाते हैं, एक कर्म वो है जो बनते हैं, एक कर्म वो है जो भोगने में आते हो। तीनों का कर्ता कौन है, मैं हूं आत्मा, अशुद्ध दशा में, शुद्ध दशा में वो भी नहीं, ऐसा विचार होना चाहिए, तब तो मजे की बात। क्या करते हैं, पेड़ में आम लगे हैं, थोड़े कच्चे हैं लेकिन खाने का बड़ा मन है, तो क्या करते हैं अपन, तोड़ लेते हैं, और आप जैसा चाहो उसका उपयोग कर सकते, तोड़ करके चटनी बना के खाना चाहो उस चटनी बना के खा लो, और चटनी भी खट्टी लगा थो उस में शक्कर डाल के खाना चाहो उसे शक्कर डालो, लोजी बना लो, और ऐसे चटनी में नमक डाल के खाना चाहो नमक डाल के खा लो, और अगर ज्यादा आपकी इच्छा है तो तोप दो, चार पांच दिनों तक साटा पकड़ो उसे तोप दो, उसके भीतर भूसा के भीतर से पकड़ निकल है, आप जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे ही आम के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही कर्म के साथ में हमने बांध लाए हैं, ठीक है, हमने आम को पेड़ लगा है, फल भी लग गए हैं, अब फल के साथ हमें क्या करना है, हम चाहें तो उसकी चटनी बना सकते कर्म की, हाँ चटनी बना सकते, जब दो दिन में आए सो ही हम चटनी बना देंगे उसकी, हम नहीं आने देंगे उसकी, हम उसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने का अर्थ क्या है कि हम असाता को साता में कन्वर्ट करके भोग लेंगे, परमुख से भोगेंगे हम, स्वमुख से नहीं भोगेंगे हम, और हम चाहे तो भी ना कर सकते हैं, 15 दिन बाद पकने वाला है, हम तो 5 दिन पहले ही तोड़ करके भूसा पका लेंगे, कर्म अपने आप फल दे करके निकल जाए, उदीर्णा कर लेंगे। उत्कर्षण अपकर्षण उद्गी उदीर्णा संक्रमण, ये क्या है, यही तो चीज है, कोई बड़ी कठिन चीज थोड़ी है, हम रोज कर सकते हैं अपने कर्म के साथ। और तीन बातें होती हैं जब हम समता रख लेते हैं, अपाय विचय धर्म ध्यान हमारे जीवन में आ जाता है, तब कर्मों की स्थिति क्या होती, उदय में आते हैं तो फल नहीं दे पाते हैं, और इतने नहीं अगर हम उसमें हर्ष विषाद ना करें तो नए फल के लिए वो बंध को प्राप्त नहीं होता है, नया कर्म नहीं बंधता है, और वर्तमान में जो बना हुआ कर्म था वो निर्जरित हो जाता है। और चौथी बात बड़े से बड़ी कि बात नहीं बिगड़ती, क्रोध का उदय आया और हम शांत रह गए, क्या क्या काम किया अपन ने, एक तो उसका फल ले लिया जो क्रोध बंधा था उसको निर्जरित कर दिया, आगे के लाने क्रोध न बंध है इस बात का इंतजाम कर लिया, और क्रोध करने से जो बात बिगड़ जाती बात भी नहीं बिगड़ी, चार काम कर ले अपन ने एक साथ, जरा सा समता धारण करके, जरा सा उसके स्वरूप को समझ करके, कह रहे ये मेरे कर्म का उदय आया है, मुझे इसमें शांत रह जाना है अन्यथा बात बिगड़ जाएगी, और अभी नहीं बहुत लंबी बिगड़ेगी बात, वर्तमान में तो बिगड़ेगी और बहुत समय तक के लिए बिगड़ेगी, जितना स्थिति अनुभाग में इसमें पटक देऊंगा, जितनी मेरी कषाय होगी तीव्रता मंदता उतनी ज्यादा स्थिति अनुभाग इसमें पड़ जाने वाला है, और बाद में मुझे ही पीड़ा देगा, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो करते भी है साथ में भगता भी है और भोगना भी पड़ता है, अकेले करने से छुट्टी नहीं मिलती कर्मों के, कर्म बंधते भी, जो करते हैं वो बनता है, जो बनता है वो भोगना पड़ता है, ये स्थिति है। अपाय विचय धर्म ध्यान करने वाला बड़ा जागरूक रहता, ऐसा आप सुन रहे होंगे तो बड़ा कठिन लगने लगा होगा कि जो तो बड़े उपद्रव को काम, हम तो सोचते कि हमने पूजा वूजा कर ली से हो गए हम धर्मात्मा, इतना विचार करना पड़ेगा, हाँ भैया इतना विचार करना पड़ेगा, 24 घंटे करना पड़ेगा, एक मिनट से नहीं होने वाला है, निरंतर विचार का मतलब है जो निरंतर चिंतन चलता रहता है, जहां भी कोई चीज आती फौरन वो विचार करता, करी वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, और वस्तु स्वरूप ध्यावते मन पावत विश्राम, फौरन उसका मन जो है विश्राम को प्राप्त हो जाता, जैसे वस्तु स्वरूप उसके ध्यान में आ जाए, और आज इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है लोगों के लिए, इसलिए व्यक्ति जो है सब कुछ करते हुए धर्मात्मा हो कहलाने के लायक होते हुए भी अंतरंग से धर्मात्मा नहीं हो पाता, बाहर और भीतर दोनों तरफ ऐसी बुद्धि जागृत होनी चाहिए, ऐसा विवेक हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। संस्थान विचय क्या है, जब अपना घर बनाऊं लगो सोई संस्थान विचय को ध्यान आ जाए कि जो कब बना रहे, एक ही संस्थान की तो बहुत चिंता है कि जो इतने टॉयलेट बनना चाहिए, यहाँ किचन, यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम, यहाँ पर डाइनिंग रूम, इस संस्थान को बनाने के लिए तो कितना चिंतित हूं, लेकिन ये लोग किसने बनाया है, किन्हू न करेव न धरेव को शट द्रव मई न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सह जीव नित, उस समय लोक भावना याद आ जावे कि लोक की संरचना वास्तव में क्या है, मैं तो इसी संरचना में उलझ रहा हूं, ये बहुत बाह्य संरचना है, लोक की संरचना तो ऐसी, और उस लोक के भीतर मैं कितना यहां पर भ्रमण कर चुका हूं और अपने भ्रमण का ही उपाय करता चला जाता हूं, कहता जरूर हूं कि मैं भ्रमण से उठता गया हूं, लेकिन करता तो सारे उपाय भ्रमण के, ऐसा विचार आ जावे उस समय तो सब भरी रह जावे, ईंट पत्थरा जोड़ जोड़ के बनावे कि बुद्धि खत्म हो जाएगी, और अगर रहेगा भी तो ये मान के रहेगा कि भैया एक दिन खाली कर देने हैं, 60-70 साल जितते हैं सोई में रहने हैं वो खाली कर देने, दूसरे को आ जाने यही में, हम भली अपने संगे तो ले नहीं जाने, सब जानते हैं, लेकिन बनाते समय ईंट ईंट रखते समय बनवाते समय और बाहर खड़े खड़े देख करके प्रसन्न होते समय मेरी बिल्डिंग की डिजाइन देखो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है, और लोक की संरचना का विचार करो उससे अप टू डेट कोई चीज नहीं हो सकती है, ना उसे किसी ने बनाया है, ना कोई उसे मिटाता है, ना कोई उसे धारण करने वाला है, वो तो उत्पाद वै द्रव्य वस्तु स्वरूप है, उसमें निरंतर होता चला जाता है, और हम उस उत्पाद भय में ही चमत्कृत हो जाते, द्रव्य को नहीं देख पाते, उत्पाद में प्रसन्न होते हैं नष्ट हो जाते, जैसे कि एक कथा नहीं होती है कि राजा के दो बेटे थे, सो एक बिटिया थी और एक बेटा था, सो मुकुट था राजा के पास में, तो मुकुट का हार बनने लगा तो बेटा रोने लगा, और बिटिया खुश है कि हार बन रहा है, और बेटे का मुकुट टूट रहा है तो खुश है, और जो राजा है वो कह रहा मेरा क्या बिगड़ने वाला, सोना तो सो मुकुट में है सो हार में है, मुझे क्या दिक्कत है, सोने का मुकुट है सो सोने का हार, कितनी समुदाय रहस्य श्रमण के लिए लिखा हुआ है कि वर्षों वर्षों मौन धारण करता हो, उपास करता हो, वन में रहता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन समता में होवे तो काय को श्रमण है, काय को साधु, ऐसे लिखा शावक के लिए कि सब कुछ होवे पर बड़ा पढ़ा लिखा होवे, बड़ा आचरणवान कहलाता होवे, लेकिन अगर उसके जीवन में संतोष नहीं है तो काय का शावक है। संतोष ही होता शावक तो, हर बात में वो कहता ठीक है, कौन पड़े प्रपंच में, वैसे ही तो हमने गृहस्थी वसाली से प्रपंच जो होगा वो गृहस्थी में और उपद्रव करो सो और संसार होने। वो जानता है संसार से भयभीत है, वो संवेग है उसके भीतर, शावक के भीतर। आज वो संवेग नहीं दिखाई पड़ता, आज बात तो इस बार करता है व्यक्ति कि मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मुक्ति का उपाय जरा भी नहीं। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से तो कर लेता है, आंतरिक रूप से नहीं करता। क्या हुआ, एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी से थक जाता हूं, फिर भी अपन चर्चा धर्म के मामले में नहीं थकना चाहिए, संसार में थक जाना चाहिए कोई बात नहीं है, शरीर में भी थक जाए तो कोई बात नहीं, मन में नहीं थकना चाहिए। वो एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं कि कैसे एक्सीडेंट हो गया। एक रेल का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो लाइन मैन था, वो जो बत्ती दिखाता था, उसको बुलाया गया, उससे गवाही वाही ली गई कि भाई वकील ने पूछा उससे कि क्यों जब ट्रेन निकली थी तब तुम वहां थे, कहना हां साहब हम थे, तुमने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, कहना साहब हमने बत्ती हिलाई थी, रोशनी बत्ती तो बताना पड़ती है, रात में ट्रेन निकले तो बत्ती हिलाते रहते हैं वो लाइन में। तो उससे तीन चार दफे उसने वकील ने पूछा कि क्यों साहब आपने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, उसने कहा बत्ती हिलाई थी, आप तो रात को सोत में जगा के पूछो तो हम कहते हैं कि बत्ती हिलाई थी, क्यों हिलाई थी हमने, उसमें क्या बात। तो अब जब वो बाहर आया, केस तो जीत गया वो, बत्ती हिलाई थी, जब केस जीत गया तो स्टेशन मास्टर ने कहा यार कि तुम हो बिल्कुल बुद्धू से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन अपनी बात में डटे रहे तुम कि बत्ती हिलाई थी, कहना साहब भी और कछु पूछते तो हमें मुश्किल में पड़ जाते, भी अगर जा पूछ लेते कि जली थी कि बुझी थी तो बहुत मुश्किल हो जाती, हमने बत्ती तो हिलाई थी, मैंने जा थोड़ी उनने पूछी कि जली की थी कि बुझी थी, बुझी थी बत्ती और हिलाते रहे तो ट्रेन एक्सीडेंट तो हो गई। और ऐसे ही अपने साथ है कि साहब हम गए तो थे मंदिर, मनो भीतर की जली थी कि नहीं जली थी, तो बुझी थी, मनो हिलाई तो अति सवेरे गए थे मंदिर तक, गए थे पूजा करी थी और स्वाध्याय करो तो सब करो तो, लेकिन भीतर कोई प्रकाश हो पाया कि नहीं, कहे के लिए किया था, बाहर की सारी क्रिया हमने करी थी लेकिन अपने आंतरिक विकास के लिए करी थी कि संसार के प्रपंच बढ़ाने के लिए, इतनी सी बात है। ये जिसको जब समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि आज ही सबको समझ में आ जावे, ऐसी सबको समझ में आउट होती तो तीर्थंकर के पास जितने बैठे समूह शरण में सो वही भाव में चले जाने तो सबको मोक्ष नहीं होता, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम तो शायद एक आज कोई व्यक्ति को और कब किसके लिए। एक बार आचार्य श्री से मैंने कहा कि क्या करें, रोज रोज जो है आप कहते कि धर्म सुनाना चाहिए और व्यक्ति को, नहीं हमारा कर्तव्य है, पता नहीं किस बात से किस व्यक्ति का कब कल्याण हो जाए, कौन सा समय किसकी काल लब्धि कब आ जावे। और एक सिचरी सी बात, कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बात भी उसके मन में आ जाए, जैसे कि मारू सह मातू सह, नवकार मंत्र भूल जाते थे, शिवभूति आचार्य थे और उनको कह दिया कि मारू सह मातू सह, रोष मत करो और तुष्ट मत हो, राग द्वेष मत करो, ऐसा सूत्र दे दिया था, वो ही भूल गए थे, सो कहला तुस्माद भिन्नम तुस्माद भिन्नम। और एक दिन क्या हुआ था, तुस्माद भिन्नम की कथा अपन को आती, बोध हो गया, तो किसको कब वेद विज्ञान होगा। हमें रोज रोज जो है धर्म की चार बातें सुनने की और अपने भीतर उनको गुनने की भी आवश्यकता है कि क्या विचार करें। दिन में बैठ करके जरूर से आपको 15 मिनट 10 मिनट अपने जीवन में सुबह शाम, ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। अपन लोग सामूहिक पूजन की प्रक्रिया तो करते हैं, मैं सोचता हूं कि सामूहिक घर के सब लोग बैठ के थोड़ा धर्म ध्यान भी करें सामूहिक रूप से। मैंने सजेस्ट किया था लोगों को, बहुत थोड़े लोग मानते हैं क्योंकि सारे उपद्रव वाली बातें हैं जी, घर गृहस्थी बहुत मुश्किल सी लगती है। हाँ देखना, आप चिट्ठी लिखते हैं और जबकि शादी हुई है वो की चिट्ठी डाल दे अपन कि हमारा फलाने फलाने देना शादी है, सो आदमी अपनी गुंजाइश निकाल के आउट जा, तो नहीं कहते हमें इन दिनों फुर्सत नहीं है और दूसरे दिनों में आ सका था, जानेंगे। इसी तरह कोई के मरण हो जावे तो सुख दुख में हम एक चिट्ठी डालते हैं, सो समय घर इकट्ठे हो जाते, क्या साल भर में एक बार ऐसी चिट्ठी नहीं लिख सकत कि हम फलाने क्षेत्र पे जा रहे, आप भी उतर पहुंचो, हम वहीं धर्म ध्यान करेंगे इन तारीखों में। ऐसी नहीं डाल सकते, एक बार साल जैसी जी डालते हम के ब्याह में है, सो हमने सबको इकट्ठे होने, घर के लोग सब रिश्तेदार होंगे इकट्ठे, क्या ऐसे ही कोई एक चिट्ठी डाल करके कि हम तो इस तारीख में फलाने क्षेत्र पर जाएंगे, आप सब भी आओ, हम सब मिलकर के धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा मौका भी हमें अपने जीवन में, और दूर नहीं भैया, तो कम से कम जैसे संडे मनाते हैं लोग कि भाई आज तो संडे है, फ्री है, चाहे जो करो सब सब कर सकते, क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो अपन सब लोग जो है सब